ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल निरंकारी कॉलोनी स्थित डीडीए ग्राउंड में 1111 जल टैंकर सेवा का शुभारंभ करेंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों का इलाज जारी है। और आज लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राजधानी में जल संकट के समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल सुबह 10 बजे शहर के निरंकारी कॉलोनी स्थित डीडीए ग्राउंड में 1111 जल टैंकर का सेवा शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी टैंकरों में जीपीएस लगा होगा, जिससे हर टैंकर की निगरानी कमांड सेंटर से होगी। श्री सिंह ने रेखांकित किया कि इस कदम से टैंकर सेवा में पारदर्शिता और पानी की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने योजना की प्रगति जानने के साथ ही पेंशन में नए नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
समाज कल्याण मंत्री ने इस बैठक में ऐसी पेंशन जो किसी वजह से लौट कर आई है या अन्य पेंशन जिन पर आवेदनों के जरिए आपत्तियां लगी है उनके निस्तारण को लेकर निर्देश दिए हैं। बैठक में लाभार्थियों के थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और सीएसी की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में पेंशन योजना की प्रगति की जानकारी दी। लाभार्थियों की सहूलियत के लिए समाज कल्याण मंत्री ने आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके अतिरिक्त बैंक खातों को आवश्यक दस्तावेजों से लिंक करने पर भी जोर डाला गया। प्रक्रिया में सुधार लाने और इसे अधिक सरल बनाने के लिए श्री सिंह ने अधिकारियों को लगातार इससे जुड़ी जानकारी जुटाने तथा पेंशन लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए कहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
दिल्ली के पर्यावरण और खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में राजधानी में स्थित कूड़े के पहाड़ का निपटारा कर दिया जाएगा। श्री सिरसा ने कहा कि वर्तमान में करीबन 1.25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जा रहा है, जिसमें वृद्धि की जरूरत है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की उपायुक्त को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली में खुलेआम प्रदूषण फैला रहे प्रतिष्ठानों को 2 नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का पालन सभी को करना होगा। श्री सिरसा ने कहा कि सरकार शहर में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि आवासीय क्षेत्र में जींस मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को तत्काल हटना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने आज ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की। मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसे मामलों को लेकर सचेत किया है जिनमें देश में धार्मिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी वेबसाइट, भ्रामक सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजन पर पेड विज्ञापनों के जरिए बड़ी संख्या में धोखाधड़ी की जा रही है। इन घोटालों में पेशेवर दिखने वाली लेकिन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्हाट्सएप अकाउंट बनाना शामिल है, जो केदारनाथ और 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ही बुकिंग करें। मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं की तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करने की भी सलाह दी है। इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। पल्लवी परमार के साथ साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सक्रिय है। अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र सिंह जाखड़ भी राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस अभियान के जरिए कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान भारी मात्रा में हीरोइन, मोबाइल फोन, मादक पदार्थ और आपत्तिजनक महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। श्री जाखड़ ने कहा कि इस मामले में 10 करोड़ रुपए की 5 परिसंपत्तियों की भी पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में मादक पदार्थ की आपूर्ति करते थे। राजधानी के सीलमपुर क्षेत्र में 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद करने के लिए आरोपी को 2 दिन की हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सीलमपुर में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। इस मामले में दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि वे मृतक युवक के परिवार से आज मिलेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस को हमने निर्देश दिए हैं, एक भी जिम्मेदार व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए। शाम तक पुलिस ने कहा है सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं भी परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा और ये अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी कुछ घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की गलतफहमी में न रहे कि ऐसी घटना करेगा उसके बाद बच जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
तीनों सेनाओं के भावी युद्ध पाठ्यक्रम का दूसरा
पुलिस को हमने निर्देश
21 अप्रैल से 9 मई तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इस बात पर व्यापक समझ विकसित की जाएगी कि युद्ध पर तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए सोच, अवधारणाओं, सिद्धांतों, रणनीतियों और तकनीक और प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करना आवश्यक है। ये पाठ्यक्रम मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में संचालित और तीनों सेनाओं के सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज द्वारा समन्वित किया जा रहा है। सितंबर 2024 में आयोजित पहले पाठ्यक्रम की सफलता के आधार पर यह विस्तारित 3 सप्ताह का कार्यक्रम आधुनिक युद्ध कौशल की जटिल चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को तैयार करने के लिए रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस महीने की 21 तारीख को नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष जिलों की समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री द्वारा 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 घायलों का इलाज जारी है। इसके अतिरिक्त 6 घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और अन्य एजेंसियों बचाव कार्य में लगी हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने यह भी बताया कि सभी घायलों के इलाज के लिए प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में ऐसे जो भी मकान हैं, उनको नोटिस मिलना चाहिए और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए।
इस अवसर पर दिल्ली सरकार की मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के साथ घटनास्थल का दौरा किया। श्री मिश्रा ने कहा कि ये क्षेत्र अवैध रूप से निर्मित 6 से 7 मंजिला इमारतों से घिरा हुआ है, जो भविष्य में और भी बड़े हादसों को जन्म दे सकती है। उन्होंने मुस्तफाबाद के अलावा सीलमपुर और जाफराबाद जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी सभी इमारतों को चिन्हित कर तत्काल खाली कराया जाए, जिससे समय रहते जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान श्री मिश्रा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार खींची ने भी मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान की टीमों से जानकारी ली। उन्होंने निगम आयुक्त को घटना की जांच कराने के निर्देश दिए, जिसमें इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज दुनिया भर में लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को वसायुक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। हेपेटाइटिस बी और सी और हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा जैसी बीमारियां अक्सर खराब जीवन शैली के कारण होती हैं, जिसमें शराब और नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन, नुकसानदायक खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक सेवन, निष्क्रिय जीवन शैली और व्यायाम की कमी शामिल है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष के विश्व लिवर दिवस का विषय है भोजन ही औषधि है। यह विषय लिवर को स्वस्थ बनाए रखने और संपूर्ण खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार के माध्यम से इससे जुड़ी बीमारियों को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे संतुलित आहार लिवर के कार्य का समर्थन और चयापचय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि आम दिनचर्या में थकावट आना तथा शरीर के विभिन्न अंगों में पीलापन आना लीवर की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इस मामले में लोगों को डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए।
अगर आंखों में पीलापन और शरीर के बाकी हिस्सों में पीलापन और यूरिन पीले रंग का हो रहा है, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हो सकता है लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सब चीजें साइन सिम्टम डेवलप होते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर कुमार ने लोगों से जीवन शैली में सुधार लाने और शराब तथा वसायुक्त खाने से परहेज करने की भी सलाह दी है।
अल्कोहल है, अल्कोहल से लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। दूसरा फैट है, तो जो ऑयली खाना है उससे लीवर की सेल्स में फैट जमा हो जाता है, जिससे कि उसका फंक्शन जो है वो गड़बड़ाया जाता है।
लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए लीवर का बहुत महत्व है और इसका रख रखाव भी अति आवश्यक है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की नई सरकार ने अपनी नीतियों और एजेंडे में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रेजरी केयर संस्थानों को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए मूल जांच शिविर आयोजित करने के लिए ILBS से सहयोग भी लिया गया। स्माइल्स स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट्स कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया है। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश और दुनिया भर से लोग यहां अच्छे और बेहतर इलाज के लिए आते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अस्पतालों को मजबूत करना सरकार की और भी बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल निरंकारी कॉलोनी स्थित DDA ग्राउंड में 1111 जल टैंकर सेवा का शुभारंभ करेंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।